نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے. آج اس میں سے ہم جس شخصیت کے بارے میں جانیں گے اور پھر اپنا تقابل کریں گے کہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے، وہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ہم اس وقت جو پڑھ رہے ہیں یہ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو بک میں سے اور پیج 126 سے ان کے حالات شروع ہوتے ہیں. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. ہر شخصیت کی طرح ان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمنٹ ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن مجید اسی لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا، ہے آپ کی میری خواہش، یہاں یہ بھی دعائیں مانگ کے جائیں کہ اللہ معجزاتی طور پہ ہماری تجوید اچھی کر دے، ہم نے محنت کوئی نہیں کرنی، بس ایسی کر دے. جی کوئی دم درود لے جائیں، ادھر کوئی ہیں بابا جی تو پوچھ لیں کہ ایسا وظیفہ دے دیں کہ ہم زمزم پئیں اور ہم حافظ بن جائیں. ویسے آپ دعا کر سکتے ہیں، زمزم پڑھتے ہوئے کہیں اللہ میری تجوید اچھی کر دے، ہو جاتی ہے. محنت کریں گے لیکن پھر اللہ اسباب بنا دیتا ہے. یعنی آپ کہیں گے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے، جس چیز کی آپ کی تڑپ ہوتی ہے نا، میں نے دیکھا ہے ان ٹائم پہ اللہ یاد دلاتا ہے. دعائیں جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے میں حیران ہوتی ہوں، خود کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ مانگنا تھا. دعائیں مانگنا میری نظر میں ایسے ہے، آپ گروسری خریدنے جاتے ہیں، اب آپ وہاں گئے گھر سے دو چار چیزوں کی لسٹ بنائی ہوتی ہے نا، تو وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کچھ اور مل جاتا ہے. میں کہتی ہوں اللہ میری کوئی دعا سیدھی بھی ہے؟ اچھا فون آتے ہیں میرے لیے مانگو، فلاں کے بچے، فلاں کے بچے، اپنے بھائی بہن، اپنے پیارے. تو میں کہتی ہوں مجھے تو یہ خیال ہی نہیں آیا. میں نے آج صبح میسج کیا، میں نے کہا میں نے آپ سب کے لیے یہ مانگا، ساری مایوس ہو گئے ہوں گے جو میں نے مانگا ہے. میں کیا کروں، مجھے ہر دعا اس سے چھوٹی لگتی ہے. اور وہ مل گیا تو وہ وجہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. بالکل مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مریض تو جا کے ڈاکٹر کو یا حکیم کو اپنی تکلیف سنا رہا ہوتا ہے نا، تو ڈاکٹر کو اس کی وجہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے ادھر کہ ان کو کیا پتا کہ یہ ہو کیا رہے، یہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ کیا، تمہارے بچے کا یہ پرابلم کیوں ہے. تو اللہ تعالیٰ بس اتنا بھی وہ کہیں کہ ہمیں نہ حقیقت شناس کرے کہ پھر ہم دوسروں کے بارے میں کچھ زیادہ کہہ ہی نہ سکے. تو بہرحال قرآن پاک کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے. آپ زمزم پئیں جب بھی دعا کریں، اپنے ترجمے کی کوشش کریں، آپ میں سے جس کا ترجمہ پکا ہے. اور آپ ماشاءاللہ جن لوگوں کا قرآن پورا ہونے والا ہے، مانگ کے جانا ہے اپنے اللہ سے کہ اگلے کسی کورس میں میرا نام پیچھے نہ ہو، ایک سے ایک آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ آسان کرے. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک اسی لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا، تو وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت کا انداز اپنائے. کتنی پیاری بات ہے، ایک تو یہ ان کے لیے کمپلیمنٹ ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، دوسرے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کا انداز اپنایا جا سکتا ہے. جیسے آپ چونکہ قرآن کی بات کریں نا، تو آپ کسی ایک قاری کو چوز کریں جن کی تجوید اور عراب اور سب ٹھیک ہے نا. ایک تو لیب میں پڑھتے ہیں نا کہ ٹون بڑی پیاری ہوتی ہے لیکن وہ اصولوں سے ٹکراتی ہے. کچھ لوگوں کا سب کچھ بڑا اچھا ہوتا ہے، تاثیر نہیں ہوتی. میں سوچتی ہوں کسی ایسی تلاوت کو چوز کریں کہ جس کی تجوید اور یہ پڑھنے کا کوئی غلطی بھی نہ ہو اور اس کے انداز میں تاثیر ہو، اس کو اختیار کریں. کریں دعا آج ادھر سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے امام سدیس جیسا پڑھنے والا بنا دے، اور کوئی جس کا مرضی کر لے. میں ایک کا نام تو نہیں لے سکتی نا، آپ چوز کریں کہ جس کا سن کر آپ کو رونا ہے، جس کی آواز آپ کے دل کو ہلا دے. تو اب ابن مسعود کی تو ہم نے سنی نہیں ہے، جنت میں سنیں گے انشاءاللہ تعالی. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا سفر کیسے شروع ہوا. لڑکپن کا زمانہ تھا، ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے تھے. لوگوں سے بہت دور مکہ معظمہ کے پہاڑی راستوں میں ہر روز اپنے آقا اور قریش کے سردار عقبہ بن نبی معیط کی بکریاں چرانے جاتے تھے. لوگ انہیں ابن ام عبد کے نام سے پکارتے جبکہ ان کا اصلی نام عبداللہ اور باپ کا نام مسعود تھا. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، غلام تھے. آپ دیکھیں نا کہ اپنے آقا، آقا کون ہوتا ہے، سردار، بڑا، یعنی یہ غریب صحابی تھے، اس میں بھی سے یہ نوٹ کر لیں. دوسری بات بکریاں چرانا، اور بلوغت سے پہلے ہی محنت کی جا رہی ہے. اصل میں یہ شخصیات تیار ہوتی ہیں، لکھ لیں اپنے اپنے بچے کا نام لے کر ذہن میں لکھ لیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بعد میں ابن مسعود بنے اور عبد الرحمن بن عوف بنے، بچپن میں ان کو محنت کی عادت ڈالیں، बाज दफा बच्चों की एक्टिविटीज या बच्चों की लावालीपन या उनके अंदर कोई चीज नहीं, वो देख के रोना आ जाता है कि आज तक माँ बाप ने इनको सिखाया क्या। आप देखिए कि शुरू से ही ये असरात शुरू हो जाते हैं। और फिर दूसरी बात है कि इनको लोग कहते थे इब्ने उम्मे अब्द, क्यों? जिसका कोई गुलाम होता था ना, लोग उसके नाम से मंसूब करते थे। हालांकि ये किसके गुलाम थे? अब्दुल्ला, अल्लाह के गुलाम थे। ये होनहार फर्जंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कुछ अजीब अजीब सी बातें सुना करता, लेकिन इन बातों की तरफ दो वजह से ध्यान ना देता। एक तो बचपन का जमाना था, और दूसरी वजह यह थी कि अक्सर वक्त मक्की माशरे से बिल्कुल अलग थलग गुजरता। रोजाना का मामूल ये था कि सुबह सवेरे अपने आका उकबा की बकरियां चराने चला जाता और रात को वापस लौटता। अब देखिए इसमें कितनी जल्दी से तावील हो सकती है अगर आप चराने को चुराने पड़े तो। इसलिए ना जब ये इस तरह के बुक रीडिंग है ना, तो और आप सासा लगा लिया करें। कई लोग गलत पढ़ देते हैं, पता नहीं होता ना, लिखने में तो चुराने ही लग रहा है ना, और नाउज बिला कोई पढ़ के जाके कह दे अच्छा इब्ने मसूद बकरियां चुराते थे, तो ये नासमझी की बात होगी ना। तो बारह रोज सुबह उठते, बकरियां चराते और रात को वापस ले आते। और चराना क्या? गेजिंग टू सी मून। एक दिन ये मक्की नौजवान यानी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो क्या देखते हैं कि दो बावकार बुजुर्ग इनकी तरफ चले आ रहे हैं। वो दोनों बहुत थके हुए थे और प्यास की शिद्दत से इनके हलक और होंठ खुश्क हो रहे थे। इनके पास आते ही दोनों ने सलाम कहा और फरमाया अजीजम हमें इन बकरियों का दूध पिलाओ ताकि इसे आतिशे प्यास बुझा सके और अपनी अंतड़ियां तर कर सके। इस होनहार लड़के ने जवाब दिया मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, ये बकरियां मेरी नहीं, मेरे पास तो अमानत है। लेकिन इन दोनों ने मेरी बात का बुरा न मनाया बल्कि इनके चेहरे खुशी से तमतमा उठे। फिर इन बुजुर्गों में से एक ने कहा हमें कोई ऐसी बकरी बताइए जो भी छोटी हो और दूध ना देती हो। तो मैंने इनके करीब ही खड़ी हुई एक छोटी सी बकरी की तरफ इशारा किया। एक बुजुर्ग आगे बढ़े, एक हाथ से बकरी की टांग पकड़ी और दूसरा हाथ इसके थनों को लगाया, और साथ ही साथ वो कुछ पढ़ भी रहे थे। मैंने बड़ी हैरानी से इनकी तरफ देखा और अपने दिल में कहा भला इतनी छोटी उम्र की बकरियां भी दूध दिया करती हैं। लेकिन मैंने देखा कि थोड़ी ही देर बाद बकरी के थनों में दूध उतर आया और दूध भी कसीर मकदार में था। दूसरे बुजुर्ग ने एक प्याला नुमा पत्थर पकड़ा और इसे दूध से भर लिया। दोनों ने खूब जी भर कर पिया और मुझे भी पिलाया। मैं ये मंजर देख कर हैरान और शशदर रह गया, यानी स्ट्रेंज लगा। जब हम तीनों खूब सैर हो गए यानी अच्छी तरह पी लिया, तो इस मुबारक शख्सियत ने थनों को हुक्म दिया कि सुकड़ जाओ, तो वो फौरन सुकड़ने लगे यहाँ तक कि अपनी असल हालत में लौट आए। इस मौके पर मैंने अर्ज की अजराहे करम मुझे भी आप ये बाबरकत कलाम सिखला दें। तो आपने फरमाया अभी आप बच्चे हैं। यही वाक्य अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो को इस्लाम की तरफ माइल करने का बायस बना। क्या आप जानते हैं कि ये मुबारक इंसान कौन थे? अंदाजा तो हो ही रहा होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रफीके खास हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हो थे। इन दिनों कुरैश ने मक्का मुअज्जमा में उधम मचा रखा था, मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफ पहुंचा रहे थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हो मक्का मुअज्जमा के इन दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर चल निकले थे। इस होनहार लड़के ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हो से खलूस दिल से मोहब्बत की और आप दोनों को भी ये दयानत व अमानत की बिना पर बहुत पसंद आया। इस वाक्य के थोड़े ही अरसे के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी खिदमत पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कमाल शफकत से अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लिया। इसी रोज से ये खुशनसीब फर्जंद बकरियों की निगरानी के फरीजे से सुबकदोश होकर सैयदुल अनाम, अनाम किसको कहते हैं? इंसान। देखिए अनाम है ना, आइन जो सूरत अल अनाम है, वो चौपाए हैं कैटल, उसका ऑपोजिट है ये अनाम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मसरूफ हो गए। फिर इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत में इस तरह रहे जिस तरह के साया इंसान के साथ रहता है। हजरों सफर में आपका साथ दिया, हर जगह खिदमत की सआदत नसीब होती। जब आप घर से बाहर जाने का इरादा करते तो फौरन जूते मुबारक आपके कदमों में ला रखते, जब घर तशरीफ लाते तो आगे बढ़कर अपने हाथों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक से जूते उतारते, आपके लिए छड़ी और मिसवाक हर दम तैयार रखते। इन्हें हुजरे मुबारक में भी आने की इजाजत थी। आप सहाबे कराम में राजदाने रसूल के नाम से मारूफ हो गए। क्यों? करीब थे ना। ये जो लफ्ज है ना हमारे कल्चर में मारूफ, सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी नहीं होता, सीक्रेटरी। जो करीब रहता है उसको सीक्रेट्स मिलते हैं। याद रखिए, खजाने मिलते ही उसको है जो करीब होता है ना। तो अल्लाह के नबी के पास रहकर इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ ले लिया। चूंकि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो की तरबियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हुई, इसलिए आपकी सीरत और किरदार को अपनाने का वाफिर मौका मिला। उन्होंने आपकी हर आदत को अपने अंदर समोने की कोशिश की, यहाँ तक कि आपके मुतल्लिक ये बात मशहूर हो गई कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरह हैं। रश्क नहीं आ रहा? लोग कहने लग गए थे आपके बड़े करीब हैं। थे लोग, वैसे हर एक कोई कहते हैं फलां आपका बड़ा फेवरेट है, फलां है तो है भाई, इसमें क्या बुरी बात है? कोई गुण होता है तो बंदा किसी का फेवरेट होता है ना, तो आप भी वो गुण पैदा कर लें। तो ये एक बहुत बड़ा फितना होता है शैतान का। ये नहीं है कि आप उस फेवरेटिज्म में आप किसी को फेवर देने लग जाएं और उसके साथ ज्यादा ही रखें, बल्कि जो ज्यादा करीब हो उसका ज्यादा सख्त मुहासबा होता है। याद रखिएगा, उसकी छोटी छोटी बातों को नोट किया जाता है। कोई ये ना ढील ले ले कि चले हम तो बड़े बेतकल्लुफ हैं, हमें किसी ने क्या कहना है। तो इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हो के बारे में अगर ये बात मशहूर थी तो ये नहीं था कि इब्ने मसूद ने इससे फिर कोई नाजायज फायदा उठाया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो ने दर्स गाह नबूवत से तालीम हासिल की। कुरान पाक की तिलावत, कुरान फहमी और शरीयत इलाहिया के इल्म में सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के दरमियान आपको एक खास मुकाम हासिल था। बतौर दलील एक वाक़ आपकी खिदमत में पेश है। वकूफ अरफा के दौरान एक शख्स हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, इस वक्त मैं कूफा से आ रहा हूँ। वहाँ एक शख्स अपने हाफजे की बुनियाद पर कुरान मजीद लिखवा रहा है। ये बात सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो बहुत गुस्से में आ गए। इतने गुस्से में आपको पहले कभी न देखा गया। आपने गजबनाक होकर फरमाया, अब ये कमेंट सुनिएगा, मुझे बताओ वो कौन है? यानी सहाबा के अंदर देखिए कितनी गैरत थी इस बात की कि कुरान के बारे में कोई इतना केयरलेस एटीट्यूड है कि जुबानी लिखा रहा है। लेकिन अभी सुनिएगा, इस शख्स ने अर्ज की कि वो जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो है। इनका नाम सुनकर आपका गुस्सा मांद पड़ गया। अल्लाह हमें भी ऐसे ही बना दे कि हमारा नाम आते ही अगला के फिर ठीक है, उन्होंने किया तो ठीक का होगा। सुभान अल्लाह। फरमाया, बखुदा मेरे इल्म के मुताबिक जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो को इस वक्त कुरान फहमी में सबसे आला मुकाम हासिल है, जैसा कि इस वाक्य से जाहिर होता है। एक रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु बैठे उम्मते मुस्लिमा के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। मैं भी इस गुफ्तगू में शरीक था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उठे और एक तरफ चल दिए। हम भी आपके साथ हो लिए। हम क्या देखते हैं कि एक शख्स मस्जिद में खड़ा ऊंची आवाज से नमाज पढ़ रहा है। अंधेरे की वजह से हम इसे पहचान न सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इसकी किरत सुनना शुरू कर दी। फिर आप हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, जिसे ये बात पसंद आती है कि वो कुरान मजीद को इस लहजे में पढ़े जिसमें वो नाजिल हुआ है। ये भी जुमला गौरतलब है। ये नहीं कहा जा रहा कि अल्लाह के नबी का स्टाइल, जिसमें ये नाजिल हुआ है। तो वो अब्दुल्ला बिन मसूद की किरत का अंदाज अपनाए। नमाज के बाद जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह उन्होंने ऊंची आवाज से दुआ शुरू की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांगो जो चाहते हो दिया जाएगा। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो फरमाने लगे, मैंने अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम मैं सुबह सवेरे अब्दुल्ला बिन मसूद को इस वाक़े की इत्तला दूंगा कि रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी दुआ पर आमीन कहते रहे। यहाँ से देखिए सहाबा का एक दूसरे के साथ ताल्लुक कैसा था। हम तो जल के कुड़ के कबाब हो चुके होते हैं। इनको पसंद ही बड़ा करते हैं, इनका तो नाम ही बड़ा है, इनका तो ये बड़ा है। हाँ जी, इनका तो होना ही था। अस्तग़फिरुल्लाह। आप यहाँ से ये नोट करें कि अल्लाह के नबी की नजर हर साथी के अंदर के टैलेंट पे होती थी। इस पूरी बुक में आपने हर पेज पे शुरू में अल्लाह के नबी के कमेंट्स है ना, जैसे आज पढ़े इनके, तो मैं वो जब पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ अल्लाह के नबी ने हीरे चुने और फिर उनको घड़ दिया। हमारे भी इर्द गिर्द बड़े हीरे होते हैं, हम उनको वैसे ठुड्डे मार के भाग देते हैं, दूर चले जाते हैं। तो लोगों की खैर खोली, अपने चार बच्चे हैं ना, हर बच्चे का अंदर का वसफ ढूंढे और उसकी उसी पे बात करें और दूसरों में उसको मेंशन करें, उसमें शौक आएगा। अब दूसरा बच्चा उसमें वो वसफ है ही नहीं, तो उसको उसके वसफ पे प्रमोट करें। अब देखिए आलू तो आलू ही रहेगा ना, करेला तो नहीं बनेगा ना। करना क्या कि आलू की खैर ले लें, करेलों की भी ले लें, तो आपका कोई एक आलू है तो एक करेला भी है। करेला कड़वा है तो कोई बात नहीं, उसके गुस्से को आप शुगर के मरीजों के लिए रख लें। हर बंदे में खैर है, हर बंदे में खैर है। अल्लाह को कहा करे अल्लाह तूने मुझे तो बड़ी खैर वाला बनाया था, पर ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया हुआ। तो आपको अपना भी छुपा हुआ टैलेंट जहाँ से निकलवाना है ये भी दुआ करनी है। मैं सुबह सवेरे इन्हें खुशखबरी देने के लिए गया, क्या खुशखबरी कि अल्लाह के नबी ने आपकी दुआ पे आमीन कही है। खुशखबरी देने के लिए गया तो क्या देखता हूँ कि हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो मुझसे पहले वहां पहुंच कर खुशखबरी सुना चुके हैं। और अगर हजरत अबू बकर को सुबह सोने की आदत होती तो क्या होता, उनकी जगह कौन ले जाता? उमर ले जाते। ये उमर अबू बकर का मुझे लगता है जन्नत में भी जाके कुछ ऐसे ही मामला रहना है। अच्छा, अबू बकर क्यों हर नेकी में आगे चले जाते थे? पहले से तैयार होते थे, इंतजार कर रहे होते थे, रास्ता देखते थे। आप कहाँ वक्त से पहले पहुंचते हैं? मैं देखती हूँ वो स्टूडेंट पहले आता है जो पहले से मुंतजिर होता है। इसके ऊपर अल्लाह से दुआ मांगनी है तो अल्लाह महबू बकर की तरह फस्तबिकुल खैरात बना दे। अल्लाह की कसम मैं बरमला इस बात का एतराफ करता हूँ कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हो हर नेकी के काम में मुझसे सबकत ले गए। हसद नहीं आया होगा इनके लिए दिल में? तकाबुल नहीं आया होगा? दुनिया में कई लोग ऐसे मौकों पर नेगेटिव हो जाते हैं, वो अगले के कुछ काम करने को अपने लिए थ्रेट समझते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हो को कुरान फहमी में एक मुमताज मुकाम हासिल था। आपने एक चीज नोट की, जब से इनका नाम शुरू हुआ अब्दुल्ला कुरान, अब्दुल्ला कुरान, अब्दुल्ला कुरान, अल्लाह ये कुरान हमारा भी तारुफ बना दे। वो अपने मुतल्लिक बयान करते हैं, इस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, इसी के फजलो करम से मुझे कुरान मजीद की हर आयत के मुतल्लिक इल्म है। ये नोट कीजिए इनका जुमला, क्या इल्म है कि वो कहाँ नाजिल हुई और इसका शाने नजूल क्या है। जब भी मुझे पता चलता कि फलां शख्स कुरान मजीद के बारे में मुझसे ज्यादा मालूमात रखता है तो मैं इसकी खिदमत में हाजिर होकर मालूमात हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करता। है हम में से कोई ऐसा? अपने लिए मांगिए। देखिए कोई इनकी बहादुरी का जिक्र अभी नहीं आया, शायद कभी तीर भी ना उठाया हो, तलवार भी ना उठाई हो, तो जो बंदा जिस फील्ड का होता है उसमें माहिर हो जाए, कोई एक चीज़ अपनी स्पेशलिटी बना ले कि बस वो और आप, वो कहना चाहिए करीन बन जाए। कितनों को रश कर रहे हैं इन पे, तो किन को सुनानी चाहिए इनकी स्टोरी जिनको कुरान की कदर नहीं है, अभी पता ही नहीं कि कितनी बड़ी दौलत है। ये तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु का अपने मुतल्लिक बयान था। हम इसी पर इक्तफा नहीं करते बल्कि एक वाकया भी बयान करते हैं जिससे इनके इल्मी मुकाम का अंदाजा होता है। एक मरतबा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु एक सहरा में सफर कर रहे थे, रात बहुत तारीक थी। दौरान सफर एक काफिला मिला, इसमें अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। हजरत उमर ने अपने रफकाए सफर में से एक शख्स को हुक्म दिया, पता करो ये काफिला कहाँ से आ रहा है। जब इनसे ये पूछा गया कि तुम कहाँ से आ रहे हो, जवाब मिला फजिन अमीक। दूसरा सवाल हुआ कहाँ का इरादा है, जवाब मिला बैते अतीक का। किसका नाम है बैत अतीक? बैतुल्ला शरीफ का। अतीक किसको कहते हैं? अमीक कहते हैं दूर, फार अवे, और अतीक पुराना, ओल्डेस्ट। इस उमदा जवाब से हजरत उमर समझ गए कि इस काफले में कोई जय्यद आलम मौजूद है। समझ आई आपको? कभी आपने भी आपस में अपने दोस्तों से, सहेलियों से, या शोहर से, या घर वालों से कुरान की जुबान बोली है? वो माई याद आ गई है, 8 दिन अब्दुल्ला बिन मुबारक के साथ सफर में रही, हर लफ्ज के जवाब में अस्सलामु अलैकुम, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम। अम्मा किधर से हो? कहने लगी सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। अच्छा तो वहां से इधर कैसे आ गई? कहने की मैं युद्लिल्लाहु फलाहत, हर लफ्ज पे कुरान कुरान कुरान। और जब एंड पे उसके बेटों से मिले, कहने लगे ये औरत एक हफ्ते से मैं इसके साथ हूँ, हर बात के जवाब में ये कुरान की आयत कोट करती है। तो बच्चों की गवाही क्या थी? क्या आप 8 दिन की बात करते हैं? हमने पिछले 40 साल में अपनी माँ की जुबान पे कुरान के सिवा कुछ नहीं सुना। तो गालियाँ तो नहीं है ना कुरान में? बच्चों को कुरान सुनाए, और ये किसको आएगा जिसने कुरान के लिए वक्त लगाया होगा? दिल ही नहीं करता बाज़ुकात कोई बात कुरान से हटके कहने को, क्योंकि आप अपनी बात बयान कर ही नहीं सकते, और आपके सामने बैठा हो वो बंदा जो कुरान पढ़ा है, आप उसको करें बात कुरान में, एक सेकंड में समझता है। अल्लाह हमें कुरान हमारे सीनों में घोल के डाल दे। तो याद रखिए कि कुरान के साथ वक्त लगाएं, ऐसे खोल के ना सादा मुसहफ खोला करें, इधर ये उधर ये। और जो मेरा अपना जाती तजुर्बा है, जो कुरान आपके सीने में फिर जुबान पर आता है, वो हर साल का दौरे कुरान है। एक फास्ट पेस पे 30 दिन 32 दिन में आप पूरे कुरान से गुजरते हैं ना, तो याद आता है वो, अच्छा ये उस सूरत में था, ये मुझे तो ऐसे याद हुआ। तो दौरे कुरान 10 दफ़ा भी सुन चुके हैं तो 11वीं दफ़ा फिर सुने, और मुसहफ खोल के सुने। जुबानी चीज़ें हमें सबको पता होती हैं, लेकिन वक्त पे समझ नहीं आ रहा था ये कहाँ थी। हजरत उमर भी फिर देखिए कितने समझदार थे कि समझ गए कि इधर इब्ने मसूद बैठे हैं जो अंदर से जवाब दे रहे हैं। अब मजीद सवाल सुनिए, कहने के चलो और सवाल कर लेते हैं। सवाल किया कि कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे बड़ी है, जवाब मिला आयतुल कुर्सी। दूसरा सवाल किया कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे मोहकम है, मोहकम समझते हैं ठुकी भी हुक्म वाली, जवाब मिला इन्ना अल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसानी व ईता इज़िल कुरबा, नहल 90। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ और एहसान करने वाले और रिश्तेदारों को वो मदद देने का हुक्म देता है, बड़ी मजबूत आयत है ये। तीसरा सवाल कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे जामे है, जामे समझते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, छोटी बात में बड़ी बात, जवाब मिला फमई यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरह, वमई यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जो जर्रा भर नेकी करता है वो इसको देख लेगा और जो जर्रा भर बुराई करता है वो भी इसको देख लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा से इस पे लें। हाँ हम तो अपनी नेकियों को देखते हैं ना आमतौर पे, अल्लाह सुबहान तला क्या देखेगा, छोटे से छोटे जर्रे। आप देखिए कि हम बाज दफा इस आयत पे थोड़ा सा गौर करें ना, फमैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, और दूसरी तरफ क्या होता है, अल्लाह वो भी देख रहा होता है जो नहीं है। अगर आप में कोई एक ही हो तो मैं आपसे भी बात करूं किस सोच के साथ, फमैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, कभी ये ना देखा करे कि इस वक्त आपकी इस नेकी से क्या होगा, ये देखिए इसके बाद में असरात क्या होंगे। मक्का इस बात की गवाही है, हजरत इब्राहिम के दौर में इतने लोग थे। आप हर चीज पे गौर करा करें कि ये सहराओं में रिस्क इस घर की वजह से अल्लाह दे रहा है, तो आप क्यों कहते हैं कि जी रिस्क लेने के लिए इधर जाऊं तो उधर जाऊं तो जॉब और कमाइयां वगैरह, बस अल्लाह पे नजरें डालें, गैब के खजाने उनके। फिर अगली आयत सुन लीजिए, और मुझे तो इब्ने मसूद से मिलने की ख्वाहिश पैदा हो रही है भाई, क्योंकि ये तो मेरा पैशन है कुरान और कुरान वाले, और कितना मजा आता होगा इब्ने मसूद के साथ लोगों को बातें करके। सवाल क्या था कि कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे ज्यादा खौफ दिलाने वाली है, अब आप भी सोचे मैं भी सोचूं। उन्होंने जो जवाब दिया वो था लई सभी अमानी यकुम वला अमानी अहलिल किताब मैं या मल सुअ युजी वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलियं वला नसीरा, निजात ना तो तुम्हारी आरजुओं पर है और न अहले किताब की आरजुओं पर, यानी ना मुसलमानों तुम सिर्फ आरजुएं करके जन्नत में पहुंच जाओगे और न अहले किताब। आज हम भी तो ये कहते हैं ना कि जन्नत सिर्फ ख्वाहिशों से मिल जानी है, नहीं, जो शख्स बुरे अमल करे उसे उसी का बदला दिया जाएगा, और वो अल्लाह के सिवा किसी को हमायती ना पाएगा और ना मददगार। कभी हमने भी इस आयत को सोचा कि ये सबसे ज्यादा खौफ दिलाती है, यानी कोई निस्बत काम ही नहीं आनी, कोई तमन्नाएं आरजुएं फिर तो सारी पहुंच जाएंगे, अपने अमल जाएंगे साथ। पांचवा सवाल, कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली है, ये हमें बताओगी। जवाब था कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीया इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम, ज़ुमर 53। कह दो कह मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, ये कौन है, ये मैं हूँ, हमें से हर एक है, ज्यादतियां करके बैठे हुओं को अल्लाह ये नहीं कह रहा हो गुनाहगार हो, ओ जहन्नमी हो, ओ मुशरिक हो मुनाफिक हो, अल्लज़ीना असरफू, बस इसराफ हो जाता है तुमसे, वैसे तुम हो बड़े अच्छे। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। ये उम्दा और जामे जवाबात सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने इरशाद फरमाया काफले वालों से पूछो कि क्या तुम्हारे साथ अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो भी हैं, जवाब मिला यकीनन मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हर बंदे में डिफरेंट खूबी रखी है, अल्लाह के नबी से पूछा गया, क्या मोमिन बुजदिल हो सकता है, डरपोक हो सकता है? तो अगर आपका कोई बच्चा डरपोक है तो आप उसको अब ये ना कह दे कि तू निकम्मा है, उसको आप किसी और चीज में लगा दें। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ कारी, आलिम, आबिद और जाहिद ही न थे, बल्कि तनोमन यानी जिसम अच्छा था, चाको चौबंद, हेल्दी, एक्टिव और बवक्ते जरूरत आगे बढ़कर हमला करने ले मुजाहिद भी थे। गालिबन जी पहले सहाबी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहली मर्तबा मक्का मुअज्जमा में मुशरिकीन के सामने कुरान मजीद की बावाज़े बुलंद तिलावत की। देखिए जुरत भी दिखाई तो फिर कुरान के मैदान में। एक दिन सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा में एक जगह जमा हुए। इस वक्त मुसलमानों की तादाद भी कम थी, अफरादी कुव्वत भी कुछ ज्यादा ना थी। सबने सोचा कि कुरैश ने अभी तक अपने कानों से कलाम इलाही को नहीं सुना, हम में से कौन ये जुरत करेगा जो इन्हें ऊंची आवाज में कुरआने मजीद सुनाए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हों ने फरमाया कि ये जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ, मैं इनको कुरआने मजीद सुनाऊंगा। सब ने कहा हमें खतरा है कहीं आपकी आवाज सुनकर वो शरारत पर ना उतर आए, हमारी राय में ये फरीजा इसे सर अंजाम देना चाहिए जिसका कबीला भारी हो। समझ आ रहा है सपोर्ट सिस्टम? अगर ये शरारत करना भी चाहें तो कबीला आड़े आ जाए, इस तरह कुरान मजीद की तिलावत करने वाला इनके शर से महफूज रहेगा। ये बातें सुनकर आपने नहायत ही जुरतमंदाना अंदाज में इरशाद फरमाया, आप मुझे तिलावत करने दीजिए, अल्लाह मेरा हामी और नासिर है। इसके बाद आप मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए और मुकाम इब्राहिम के पास आकर खड़े हो गए। कुरैश इस वक्त काबा के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। आपने ऊंची आवाज में इन आयात की तिलावत शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान, अल्लमल कुरआन, खलकल इंसान, अल्लमहुल बयान। आप लगातार सूरह रहमान की तिलावत करते रहे। कुरैश ने जब गौर किया तो इन्हें पता चला, अरे ये तो वही कुछ पढ़ रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने पेश करते हैं। और यहाँ नोट कीजिएगा कि मक्का वाले लफ्ज रहमान से चिढ़ रखते थे। देखते ही देखते सब मजमा इन पर पल पड़ा। वह आपको मारते जा रहे थे और आप लगातार पढ़ते जा रहे थे। आप जब फारिग होकर अपने साथियों के पास पहुंचे तो आपके बदन से खून बह रहा था। सहाबा किराम ने आपकी हालत देखकर फरमाया, हमें इसी बात का अंदेशा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम अब दुश्मनाने खुदा मेरी नजर में पुरकाह की हैसियत भी नहीं रखते, यानी एक पर के बराबर भी नहीं है और लाइट वेट कह ले। अगर आप इजाजत दे तो मैं सुबह फिर वहीं जाकर इनके सामने तिलावत करता हूँ। सब ने ऐसा करने से रोक दिया और फरमाया, आपने हक अदा कर दिया, कुरैश को वो मुकद्दस कलाम सुना दिया जिसे वो हरगिज सुनना ना चाहते थे। तो क्या पता चला कि हुज्जत तमाम की। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो के दौरे खिलाफत तक जिंदा रहे। कितने साल नबी के बाद? 2 साल अबू बकर, 10 साल उमर के और फिर उस्मान के दौर में। जब आप मरजुल मौत में मुबतला हुए तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो आपके पास आए और दरियाफ्त किया, आपको किससे शिकायत है, हम तो पटारा खोल देते। इन्होंने जवाब दिया, अपने गुनाहों से। आपने दरियाफ्त फरमाया, आपका दिल क्या चाहता है? फरमाया, अपने रब की रहमत। इसके बाद खलीफतुल मुस्लिमीन ने फरमाया, क्या वो सब माल आपके नाम ना लगा दूं जो कई साल से आप नहीं ले रहे? फरमाया, मुझे माल की जरूरत नहीं, यानी इनको ओहदा मिला हुआ था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे लेकिन पे नहीं ले रहे थे। आपने कहा मुझे माल की जरूरत नहीं। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये माल आपकी बच्चियों के काम आएगा। और आपको शुरू में बताया कि ये गरीब सहाबी थे। फरमाया, क्या आपको अंदेशा है कि मेरी बच्चियां फकरो फाका में मुबतला हो जाएंगी? मैंने अपनी तमाम बच्चियों को हुक्म दिया है कि वो हर रात सूरत बाकिया की तिलावत करें। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मन करल बाकिया कुल्ल लैलतिन लम तुसिबहुल फाकतु, कि जो हर रात सूरत बाकिया की तिलावत करेगा इसे कभी फाका नहीं होगा। याद रखिए कि ये रिवायत ज़यीफ है, बड़ी मारूफ लेकिन ज़यीफ रिवायत है। जब रात हुई तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो अल्लाह को प्यारे हो गए। नज़ा के वक्त आपकी जुबान जिक्र इलाही से तर थी। आपकी जुबान ने जिक्र पर आयात बय्यिनात का विर्द जारी था, यानी मौत के वक्त कुरान उनकी जुबान पे था। ये किसका होगा जिसकी जुबान पे जिंदगी में कुरान होगा? तो ये थे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब से राजी हो, बेहतरीन तरीके से काम ले। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالی خیر خلقه واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.